आप सुन रहे हैं नवभारत गोल्ड। मोदी और विपक्ष दोनों को बदलनी होगी चाल। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद विपक्ष को नए सिरे से करनी होगी तैयारी। वहीं बीजेपी के लिए भी जरूरी हो गया है मंथन। नीलांजन मुखोपाध्याय। 2 मई की शाम हम लोग टाइम्स नेटवर्क के चैनल मिरर नाउ पर विधानसभा चुनाव के नतीजों से जुड़े प्रोग्राम में थे। हमने देखा कि कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता धमाल मचाए हुए हैं। यही हाल चेन्नई में डीएमके के कार्यकर्ताओं का था। चुनाव आयोग राज्यों में स्थानीय प्रशासन को पहले ही निर्देश जारी कर चुका था कि विजय जुलूस और इस तरह की हरकतों पर सख्ती से पेश आए। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि नेताओं को भी अपने कार्यकर्ताओं को तुरंत कहना चाहिए कि वे अपने घरों में जाएं और भीड़ भाड़ से कोरोना वायरस को पांव पसारने का एक और मौका कतई न दें। मेरी भी यही राय थी कि इस तरह का संदेश शीर्ष स्तर से आना चाहिए। कुछ ही देर में ऐसा हुआ भी। ममता बनर्जी और एमके स्टालिन ने अपने समर्थकों से कहा कि वे जीत की खुशी अपने घरों में मनाएं, सार्वजनिक जगहों पर नहीं। मैंने ये भी कहा कि विश्लेषक के रूप में हमें यह भी समझना होगा कि ये लोग इन्फेक्शन का रिस्क क्यों उठा रहे हैं। मैंने कहा कि कम से कम पश्चिम बंगाल में तो बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस की धमाकेदार जीत बहुत इमोशनल मामला है। इसे किसी प्रेशर कुकर की सीटी से गैस निकलने की तरह देखा जाना चाहिए। कई सालों से बीजेपी तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी को निशाने पर लिए हुए है। ऐसे में टीएमसी के कार्यकर्ता इस जीत को इस तरह भी देख रहे हैं कि मानो उन्होंने बदला ले लिया हो। जुलूस, ढोल नगाड़े, नाच गाना, एक दूसरे को गुलाल सिंदूर लगाना बंगाली संस्कृति के रंग हैं। महामारी के माहौल में इसका समर्थन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कार्यकर्ता इसके जरिए अपने मन की बात कह रहे हैं। सवाल ये है कि इस लम्हे के बाद क्या होगा। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के चुनावों में जीतने और हारने वाले हर शख्स को ये सवाल खुद से पूछना होगा। इन नवनिर्वाचित या दोबारा चुने गए नेताओं को जल्द सत्ता संभाल कर दोनों मोर्चों पर चुनौतियों से पार पाना है। एक मोर्चा है कोविड महामारी का, तो दूसरा है लाखों लोगों के सामने आए आर्थिक संकट का। इन नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर बदलती सियासी तस्वीर के लिहाज से भी खुद को तैयार करना होगा। बीजेपी के मौजूदा शासन के कट्टर समर्थक भी अभी ये दलील दे सकते हैं कि लोगों को पश्चिम बंगाल में चुनावी हार के बजाय सकारात्मक चीजों पर गौर करना चाहिए। ये ठीक बात है कि बीजेपी के लिए उम्मीद के कई संकेत हैं। असम में दोबारा सरकार बनेगी उसकी, पुडुचेरी में उसके गठबंधन सहयोगियों ने जीत दर्ज की है, तमिलनाडु में एनडीए के खिलाफ एक तरफा जीत नहीं मिली डीएमके और कांग्रेस गठबंधन को, और ये भी कि कोयंबटूर में कमल हसन को बीजेपी कैंडिडेट ने हराकर सबको चौंका दिया। इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी में इमरजेंसी के दौरान जो हाल था, लल्लो चप्पो और चापलूसी का लेवल का इस पार्टी में उससे भी ज्यादा हो गया है। ऐसे में बधाइयां तो जाहिर हैं कि 2 पावरफुल लोगों को ही मिलनी चाहिए। वैसे भी बीजेपी ने 2014 में शुरुआत की थी हिंदी पट्टी की पार्टी के रूप में, और धीरे धीरे इसने दक्षिण और उत्तर पूर्व में अपनी पैठ बना ली, और ऐसा उन्हीं 2 लोगों के नेतृत्व में हुआ। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पश्चिम बंगाल में जीत इन दोनों लोगों के लिए बहुत अहम थी। भगवा ब्रिगेड के दमदार सफर के इन 8 वर्षों में पश्चिम बंगाल में जीत की सबसे ज्यादा बेचैनी थी। यही वजह है कि दोनों टॉप नेताओं पीएम नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह ने वहां कैंपेन में बहुत ज्यादा समय दिया। पश्चिम बंगाल में ट्रॉफी की चाहत थी। संतावना पुरस्कार से संतोष नहीं मिलेगा। वहां जीत मिलने पर जो माहौल बनता उसके मुकाबले अब केंद्र के लिए जमीन कुछ कमजोर हो गई है। इस चुनावी नतीजे को देखते हुए कोविड महामारी से निपटने के मामले में केंद्र को अपना रवैया बदलना होगा। पिछले साल उसने जब पूरा मामला अपने हाथ में ले रखा था तो अब जिम्मेदारी दूसरों पर नहीं डालनी चाहिए। महामारी की दूसरी लहर से निपटने में राज्य सरकारों के साथ तनातनी वाला खेल बंद होना चाहिए। मिलजुल कर, यानी दूसरे शब्दों में कहें तो सहकारी संघवाद के नजरिए से काम होना चाहिए। सहकारी संघवाद की बात मोदी भी खूब किया करते हैं। अभी जो संकट है उससे निपटने के कदम तत्काल उठाए जाएं। आगे पैदा होने वाली जरूरतों के लिहाज से भी योजनाएं बनाई जाएं। वायरस के तेजी से फैलाव से बनने वाले हालात पर काबू पाने में इससे मदद मिलेगी। अपना सियासी दमखम वापस पाने के लिए मोदी को एक कदम पीछे हटने पर विचार करना होगा। उन्हें उन किसानों को उनके घर भेजने पर ध्यान देना होगा जो दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। बीजेपी को उन तीन राज्यों की चुनावी चुनौती के लिए तुरंत योजना बनानी होगी जहां वो सत्ता में है। इन तीन राज्यों गोवा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होना है। बंगाल चुनाव में विपक्षी दलों की नेटवर्किंग बढ़ी दिखती है। कई नेता टीएमसी के मंचों पर नजर आए। ये एकजुटता बीजेपी के लिए एक और चुनौती है। विपक्ष के हर नेता ने ममता बनर्जी को बधाई दी, लेकिन ये मान लेना जल्दबाजी होगी कि बीजेपी विरोधी कोई बड़ा मोर्चा जल्द बनाने जा रहा है। इससे पहले भी कई मौकों पर ऐसी उम्मीदें ध्वस्त हुई हैं। एक तो 2015 की ही बात है, जब बिहार में बीजेपी के हार के बाद ऐसी एकजुटता की उम्मीद परवान चढ़ी थी, लेकिन उसका सिराजा बिखर गया। इसमें कोई शक नहीं कि बंगाल की मुख्यमंत्री अपने लिए एक भूमिका देख रही हैं। उन्होंने कहा भी है कि उनका अगला लक्ष्य दिल्ली से सांप्रदायिक ताकतों को उखाड़ फेंकना है। ऐसी महत्वाकांक्षा को हकीकत में बदलने के लिए विपक्षी दलों को अपने मतभेद भुलाने होंगे। जिन राज्यों में उनकी जमीन है वहां भी उन्हें अपनी चाहतों को काबू में रखना होगा। बीजेपी विरोधी ऐसी किसी भी मोर्चे के गठन में कांग्रेस का रुख अहम है। क्या कांग्रेस नेतृत्व ऐसे किसी मंच की अगुवाई करने का इरादा छोड़ेगा और किसी ऐसे क्षेत्रीय नेता को ये जिम्मा देगा जिसके साथ उसका चुनावी मुकाबला होता रहा है? कांग्रेस ने बंगाल में वाम मोर्चा से हाथ मिलाया ही था, वहीं केरल में दोनों खेमे आमने सामने थे। बंगाल में 3% से भी कम वोट शेयर के साथ कांग्रेस को अब अपनी चाहतें कम करनी चाहिए और खुद को एक ऐसे क्षेत्रीय दल के रूप में देखना चाहिए जो दूसरों से कुछ बड़ा है। कुछ उसी तरह का जैसा 1980 के दशक के आखिर के दिनों में और 1990 के दशक के शुरुआती हिस्से में जनता दल का हुआ करता था। इस चुनाव में ममता बनर्जी के अलावा दो और बीजेपी विरोधी नेताओं ने जीत दर्ज की है, लेकिन विपक्षी मोर्चे में नेशनल रोल का दावा एमके स्टालिन शायद ही कर पाए, क्योंकि पलानी सामी की पार्टी को वोटरों ने पूरी तरह खारिज नहीं किया। वहीं पिनाराई विजयन की छवि कुशल प्रशासक की है, लेकिन वो सीपीएम के नेता हैं और यही बात उनके लिए एक बाधा भी है। करीब 25 साल पहले ज्योति बसु की अगुवाई में यूनाइटेड फ्रंट सरकार बनाने की संभावना दिखी थी, लेकिन पश्चिम बंगाल के सीएम रहे बसु का कद विजयन से कहीं ज्यादा बड़ा था। और बात यह भी थी कि जब लेफ्ट फ्रंट का राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ज्यादा प्रभाव था। विपक्षी दलों के लिए अभी गठबंधनों पर चर्चा करना जल्दबाजी ही होगी। उनको दरअसल आपस में बातचीत करनी चाहिए, देखना चाहिए कि देश के सामने अभी जो बड़े मसले हैं उनके बारे में क्या किया जा सकता है। महामारी से निपटने की रणनीति पर भी बात करनी होगी। राहुल गांधी लगातार ऐसे मुद्दे उठाते रहे हैं जिन पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। उनके सुझावों को ध्यान में रखकर बातचीत शुरू की जा सकती है। विपक्षी दलों को देखना होगा कि हर पार्टी और उसके नेता की क्या ताकत है और क्या कमजोरी है, उसके मुताबिक ही जिम्मेदारी तय करनी होगी। शानदार चुनावी जीत के बाद ममता बनर्जी चाहेंगी कि सब उन्हें अपना नेता मान लें। उनका दावा जायज है, लेकिन कई दूसरे विपक्षी नेताओं की तरह ममता को भी छोटा मोदी बनने की हरकतें बंद करनी होगी और ज्यादा खुला रुख अपनाना होगा। इस शासन को हटाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, धीरज के साथ कदम बढ़ाने होंगे।
इस तरह के और दिलचस्प पॉडकास्ट सुनने के लिए विश्व की सर्वश्रेष्ठ हिंदी इंफरटेनमेंट सर्विस नव भारत गोल्ड पर लॉगिन कीजिए। गोल्ड के पॉडकास्ट का खजाना मिलेगा नवभारतगोल्ड.com पर।